اللہ احد اللہ یونیک ہے. اگر آپ کلوزسٹ ٹو عربک ان ڈیپتھ اسٹڈی جا کر اس کا ترجمہ کریں گی تو اس طرح سے اس کا ترجمہ کیا جائے گا. کیونکہ انہوں نے سوال کیا تھا من ہوا ربک ما ہوا ربک, تو جواب دیا گیا اس سے پہلے کہ اس کی صفات بتائی جاتی بتایا گیا کہ اللہ کون ہے. اب لاسٹ ورڈ آف دا فرسٹ آیا, قل ہو اللہ احد, کون ہے اللہ؟ وہ جو احد ہے, وہ جو یونیک ہے. یہ قرآن کی شارٹیسٹ سورہ میں سے ایک سورت الاخلاص ہے, اور سورت الاخلاص کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ کے دو ایسے نام یا صفات آئے ہیں جو پورے قرآن میں کہیں نہیں آئے. اللہ کے لیے ایز اے صفت جو دو چیزیں آپ کو یہاں ملیں گی وہ پورے قرآن میں نہیں آئے. ان میں سے ایک ہے یہ پہلی آیت کا لاسٹ ورڈ احدن, اور دوسرا آگے آئے گا الصمد, الصمد صوت کے ساتھ. یہ دونوں اور کہیں قرآن میں اس طرح سے اللہ کی صفات اور نام کے طور پر نہیں آئے. ناؤ فوکس آن دا ورڈ احد. یہ وہ صورت ہے ڈونٹ فوگیٹ کہ جس کو ہم 200 کلومیٹر پر آر کی اسپیڈ سے پڑھ سکتے ہیں, لیکن آئی ایم 100% شیور کہ اب جب انشاءاللہ آپ اس ایک آیت کو اس طرح سے سننے کے بعد اپنی نماز میں قیام میں کھڑے ہو کر پڑھیں گی, آپ بغیر سوچے سمجھے پڑھ ہی نہیں سکتے. اٹس کمپلیٹلی امپاسبل. کچھ نہ کچھ تو آپ کو یاد آئے گا, کچھ نہ کچھ تو آپ کو اسٹرائک کرے گا, کچھ نہ کچھ تو آپ کا دل کا تار اللہ کی محبت سے کنیکٹ ہوگا ڈیفینیٹلی انشاءاللہ. ناؤ فوکس آن دا ورڈ احد, جو اللہ کا پہلا ایٹریبیوٹ سورۃ الاخلاص میں مینشن کیا گیا ہے. احد عربی زبان میں کہتے ہیں, جس کو آپ عام اردو میں آپ ترجمہ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہیے اللہ ایک ہے. ہم اردو میں یہی ترجمہ سنتے ہیں سورۃ الاخلاص کا, کہیے اللہ ایک ہے. عربی میں ایک کے لیے, ون کے لیے دو آپ کو الفاظ ملتے جلتے ملتے ہیں. ایک تو یہیں آیا احدن, اور ایک لفظ آتا ہے عربی زبان میں واحدن, واؤ کے ساتھ واحدن. اچھا واحدن کہاں آپ نے سنا ہے؟ واحدن آپ نے سنا ہے کاؤنٹنگ میں. عربی کاؤنٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے ون ول بی واحد, ٹو ول بی اتنا, تھری ول بی ثلاثہ. سو عربی زبان میں فار دا نمبر ون, فار دا کاؤنٹنگ نمبر ون ہم استعمال کرتے ہیں واحدن, ایک. اچھا یہاں پر کیا آیا ایک کے لیے؟ احد. ایک اور لفظ آتا ہے اکیلا, جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے عربی زبان میں, اس کے لیے لفظ آتا ہے وحید, ود دا سیم روٹ ورڈ, واؤ ہا دال سے ہی بنتا ہے احد, واؤ ہا دال سے ہی بنتا ہے واحد, اور واؤ ہا دال سے ہی بنتا ہے وحید. قرآن میں آتا ہے ذرنی ومن خلقت وحیدا, مجھے چھوڑ دو اور اس کو جس کو اکیلے میں نے پیدا کیا ہے. وحید کہتے ہیں وہ جو بغیر کسی مددگار کے ہو, صحیح. تو اب ذرا فوکس کیجئے دا ڈفرنس بٹوین واحد اینڈ احد. کاؤنٹنگ میں آپ کو ملتا ہے ہمیشہ واحد. اردو پڑھنے والے کہتے ہیں فرق کیا پڑتا ہے, میں نے واحد کہا یا احد کہا. پر جو عربی سمجھنے والا ہوگا, جو قرآن کی گہرائی میں اترنے والا ہوگا, وہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ میں نے واحد کہا یا احد کہا. ناؤ لسن کیئرفلی. واحد کہتے ہیں کاؤنٹنگ میں نمبر ون کو. واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک آؤٹ آف مینی, ون آؤٹ آف مینی. اگر عربی میں یہ کہنا ہے کہ مسجد میں کوئی ایک نہیں بلکہ بہت زیادہ لوگ ہیں, اردو کا ایک جملہ میں آپ کے سامنے بول رہی ہوں, اگر آپ نے اس کو عربی میں بولنا ہے کہ مسجد میں کوئی ایک نہیں بلکہ بہت زیادہ لوگ ہیں, تو عربی میں کہیں گے لیس واحد فی المسجد. سمپل ورڈ کون سا آیا ایک کے لیے؟ کوئی ایک نہیں بلکہ بہت سارے ہیں, لیس واحد. اگر یہ کہہ دیا نا کہ لیس واحد, اٹس انڈرسٹوڈ کہ کوئی ایک نہیں ہے, بہت سے ہیں, صحیح. اور اگر عربی میں کہنا ہے کہ مسجد میں کوئی ایک بھی نہیں ہے, تو پھر کہیں گے لیس احد موجود فی المسجد, کہ مسجد میں کوئی ایک بھی نہیں ہے. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वाहिद एंड अहद. वाहिद आता है वन आउट ऑफ मैनी, और अहद आता है द ओनली एंड द वन एंड ओनली, द यूनिक वन. वाहिद आता है वन आउट ऑफ मैनी, अहद आता है द यूनिक वन, उस जैसा कोई है ही नहीं, द वन एंड ओनली. ये है फर्क जो आपको वाहिद और अहद में मिलता है. कुरान में आता है वला युशरिक बि इबादति रब्बिही अहदा, और वो अपने रब की इबादत में किसी एक को भी शरीक नहीं करते. तो ये तो एक एक्सप्लेनेशन थी आपके सामने अल्लाह का एट्रीब्यूट अहद की. एक्सप्लेनेशन नंबर वन, द डिफरेंस बिटवीन अहद एंड वाहिद. वाहिद विल बी वन आउट ऑफ मैनी एंड अहद विल बी द वन एंड ओनली, द यूनिक वन. सेकेंड एक्सप्लेनेशन स्कॉलर्स इस अहद की देते हैं. वो कहते हैं कि कुरान में ये अहद और भी कई जगह इस्तेमाल हुआ है, जैसे अहदुकुम, अहदुहुमा, इस तरह से आया है. ये सब जगह के ऊपर जो आया है कुरान के अंदर, जो अरबी ग्रामर समझने वाले हैं वो समझेंगे, ये मुदाफ के तौर पर आया है, एज अ पोजेस्ड नाउन आया है, यानी इसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन में दूसरा इसम आया है. दिस इज़ द वाहिद मुकाम जहाँ ये अल्लाह की सिफत के तौर पर आया है, और ये अकेला आया है, तन्हा आया है, ताकि ये अपने पूरे मीनिंग्स को शो करे. और यहाँ इसका मफहूम क्या है अकेला आने में, जो ये अहदुन आया है, हुवल्लाहु अहद, इसका मतलब है, अब ज़रा इसके मीनिंग्स समझिएगा जो मैं आपको डिफरेंट डिक्शनरी से इस वक्त सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताने जा रही हूँ. अहद अल्लाह की सिफत के तौर पर आया है, क्या मतलब है इस बात का? नंबर वन, वो जिसका ओरिजिन, जिसका लीनिएज अननोन है. याद रखिएगा द यूनिक, द वन एंड ओनली. तो इस अहद का पहला मफहूम जो आपको डिक्शनरीज में मिलेगा क्या होगा? इसका ओरिजिन अहदुन, अल्लाह की सिफत बयान की जा रही है मुशरकीन मक्का को, याद रखिएगा, ताकि मुशरकीन को पता चल जाए कि वो जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब को जानना चाह रहे हैं, कैसा है रसूल अल्लाह का रब, और आज कैसा है मुसलमानों का रब. नंबर एक, वो जिसका ओरिजिन, जिसका लीनिएज अननोन है. नंबर टू, वो जिसका कोई पेयर नहीं है, वो जिसका कोई पेयर नहीं है. नंबर थ्री, वो जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है. वो जिसका ओरिजिन अननोन है, वो जिसका कोई पेयर नहीं है, वो जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है. फोर्थ, वो जिसका कोई एंटिनम नहीं है, जिसकी कोई जिद नहीं है. ये प्लीज इसको सतही तौर पर मत लीजिएगा, इट्स अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक ऑफ ईमानियात. बस मैंने आपको मफहूम लिखवा दिए, बिकॉज आई डोंट हैव द टाइम टू डिस्क्राइब ईच वन ऑफ इट. सही, बस यूं समझें, वो जिसका लीनिएज मालूम नहीं है, ओरिजिन मालूम नहीं है, यूनिक है, पेयर नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है. सिंपल वन लाइनर, फॉर अहद द वन फॉर होम सेकेंड इज इम्पॉसिबल, द वन एंड ओनली, इसका मतलब बनता है. अब ज़रा एक आयत सूरतुल इखलास की, जस्ट कीप इन माइंड, रसूल अल्लाह से सवाल किया गया कि आपका अल्लाह, आपका रब कौन है, और आयत आई कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह है जो यूनिक है, जिसका कोई पेयर नहीं है, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है, जिसका कोई सेकंड पॉसिबल नहीं है. जब ये अहद का तारुफ मुशरिकीन के सामने रखा गया है, मुशरिकीन याद रखें आपसे और मुझसे कहीं ज़्यादा अरबी ज़ुबान की गहराई जानते थे. अरबिक लैंग्वेज, इल्मुल बलागा उनकी प्राइड थी, इट वॉज़ देयर नेशनल प्राइड. अपनी ज़ुबान ही की बेसिस पर वो इस खत्ते में सिर्फ पहचाने जाते थे, अगर अदरवाइज उनकी कोई रिकग्निशन नहीं थी. ना पॉलिटिकल पावर थे, ना डेवलपमेंटल पावर थे, ना जो थे वो को किसी किस्म की आर्म फोर्सेस टाइप पावर थे, ना जो थे वो किसी किस्म की जो थे वो कोई मॉन्यूमेंट्स बनाने के हिसाब से बहुत एम्पावर्ड नेशंस थे. नथिंग. द ओनली थिंग जो उनकी नेशनल प्राइड थी वो उनकी अरबिक लैंग्वेज थी. जब ये सिफत अल्लाह के साथ अटैच की गई एज अहद, तो अरब की ज़मीन पर रहने वाले तमाम मुशरिकीन जो अरबी ज़ुबान की गहराई जानते थे, स्कॉलर्स लिखते हैं कि उनके लिए अल्लाहु अहद उनका तारुफ उस ज़मीन पर जलजले से कम नहीं था. इस बात को बहुत गौर से समझिएगा. क्यों? इसलिए कि उनको ये सारे मीनिंग्स आते थे जो मैंने अभी आपके सामने रखे हैं. यूनिक है, पेयर नहीं है, ओरिजिन मालूम नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, देयर इज़ नो सेकेंड विद हिम, वो ये सब जानते थे. मगर वो तो जानते थे, उनके तो अपने भी खुदा हैं. अल्लाह के बारे में, लफ्ज अल्लाह के बारे में उनकी अपनी फिलॉसफीज थी. वो आसमान वाले खुदा पर अलग यकीन रखते थे और ज़मीन के ऊपर मौजूद स्मॉल जी से लिखे जाने गॉड्स के ऊपर अलग बिलीफ रखते थे. उन्होंने हरम को 360 बुतों से भरा हुआ था. हर कबीले का अपना अपना खुदा था, हर कबीले का. तो अल्लाह के साथ भी गलत कॉन्सेप्ट थे और अल्लाह के साथ पार्टनर्स भी रखे हुए थे. और जैसी आजजी आसमान वाले रब के सामने वो करते, वो वैसी आजजी अपने मिट्टी और लकड़ी और रॉक से बने हुए आइडल्स के सामने भी रखते थे. तो वो जैसा अल्लाह के सामने दुआ मांगते और आजजी इख्तियार करते और हाथ उठाते, वो अपने ज़मीन के खुदाओं के सामने भी ऐसे ही हाथ उठाते थे. बिल्कुल जैसे आज के दौर में, इन दिस करंट सिनारियो ऑफ 2020 ऑफ 21st सेंचुरी, यू कैन सी कि हमारे अभी भी इंसानियत के अंदर, ह्यूमैनिटी के अंदर ऐसी नेशंस मौजूद हैं जो आसमान वाले खुदा को अलग समझते हैं, वो है, और वो ज़मीन के ऊपर भी हर चीज़ को खुदा मान लेते हैं. द क्लासिकल एग्जाम्पल इज़ द हिंदुइज़्म. हिंदुइज़्म के अंदर एक सिंपल, मैं आपको एक उनकी फिलॉसफी अगर खोल कर बताऊँ, हिंदूज जो हैं जो अपना ग्रीटिंग देते हैं, जैसे हमारी ग्रीटिंग है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो उनकी ग्रीटिंग में जो भी अल्फाज हैं, बट द एक्सप्रेशन जो वो इस्तेमाल करते हैं, वो जो अपने हाथ जोड़ते हैं, अगर आप इसकी हिस्ट्री को पीछे पढ़ना शुरू करें विद इन द क्लासिकल हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज़्म, तो आपको पता चलेगा कि हिंदू आज भी हर चीज़ के सामने हाथ क्यों जोड़ता है. खुश होगा तो भी, मिलेगा तो भी, रुखसत होगा तो भी, डर जाएगा तो भी, एक्साइटमेंट में होगा तो भी, दिस इज़ देयर कॉमन एक्सप्रेशन. ये जो हाथ जोड़ते हैं एकदम से, ये हाथ जोड़ना सिंपली, अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल वन लाइनर में बताऊँ, इट्स देयर एक्ट ऑफ हम्बलनेस. किस सेंस में एक्ट ऑफ हम्बलनेस? यकीनन हमारा तो काम है ना कि हम तो हर नेशन, हर कंट्री, हर रिलीजन के अंदर इस इस्लाम की दावत को हिकमत के साथ लेकर जाएं. हमें इंसानों से नफरत नहीं है, हमें इंसानों की गलत फिलॉसफीज पसंद नहीं हैं, हमें इंसानों के गुमराहियों से नफरत इस तरह से है कि हमें उस इंसान तक सीधा रास्ता पहुंचाना है जिसको जब जहां जैसा मौका मिले. फाइन, तो ये एक्ट ऑफ हम्बलनेस क्यों करते हैं? बिकॉज उनकी तारीख में जो सिनॉप्सिस आता है बात को आसान समझने के लिए, उनके मुताबिक आसमान का खुदा किसी भी रूप के अंदर ज़मीन में किसी भी चीज़ में पेनिट्रेट कर सकता है. वो हमारे बुतों के अंदर भी आ सकता है और वो किसी इंसान और किसी मखलूक में भी आ सकता है. दिस इज़ अ सिंपल फिलॉसफी जिसको आप कहते हैं ब्रॉड फिलॉसफी, बिकॉज उसके अंदर भी बहुत सेक्ट्स हैं हिंदुइज्म में. बट द ब्रॉड फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म इज़ दिस के अल्लाह आसमान वाला जो खुदा है वो ज़मीन के किसी भी क्रिएशन में पेनिट्रेट कर सकता है, वो किसी रूप में भी आ सकता है. इसीलिए वो अपने बच्चों को यहाँ तक सिखाते हैं, मतलब सॉरी ऑन अ लाइटर नोट, मगर वो अपने बच्चों को यहाँ तक सिखाते हैं कि जब किसी चीज़ से डर भी लगे, लाइक कॉकरोच सामने आ जाए, तो कॉकरोच के सामने भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ. बिकॉज जब आप उसके सामने हम्बल हो जाओगे तो आपको क्या पता हो कॉकरोच की शक्ल में राम है या शिवा है या जो भी उनके खुदाओं के नाम है, वो आपके सामने आकर खड़ा है. सो बी हम्बल इन फ्रंट ऑफ एवरी क्रिएशन ऑफ द अर्थ, क्या पता खुदा इसकी शक्ल में तुम्हारे सामने मौजूद हो. तो ये फिलॉसफी, ये माइंडसेट जब हो इंसानों का, तो आप समझ सकती हैं कि जब इस माइंडसेट के इंसान से कहा जाएगा आसमान वाले रब की पहली क्वालिटी ये है कि वो अहद है, वो कहीं और किसी और फॉर्म में नहीं आ सकता, वो आसमानों पर मौजूद है और अपनी फुल कैपेसिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स के साथ जमीन वालों के एक एक अमल से वाकिफ है। दिस इज अल्लाह, दिस इज अल्लाहु अहद, ये है अल्लाह का तारुफ। और जब ये तारुफ आया तो बिल्कुल यही हाल जो हमें एक ग्लिम्स आज अपने आसपास जो है वो हिंदुइज्म में नजर आता है, यही ग्लिम्स था उस वक्त मुशरिकीन अरब के अंदर, बिकॉज ऑलमोस्ट उनके लिए भी हर चीज आइडल थी, हर चीज बुत थी, और बुत के सामने वो इसी तरह हाथ जोड़कर खड़े होते थे जो उनको आजजी रब के सामने इख्तियार करनी चाहिए थी। आप सोचें, उनसे कहा गया कि अपने सारे दिमाग की गलत फिलॉसफी को निकालो और जस्ट नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इलाह, अल्लाह को अल्लाह के मुकाम पर रखो, आसमान वाले को आसमान वाले के मुकाम पर रखो, और ये ज़मीन के सारे झूठे खुदाओं को ख़त्म करो। तो ये किसी जलजले से कम नहीं थी सूरतुल इखलास की आयत। सहाबा को ऐसे ही मोहब्बत नहीं थी, इमेजिन उसी माशरे का बाय प्रोडक्ट थे, वो भी उस शिर्क के माहौल में रहते रहे थे जिन्होंने कलमा पढ़ लिया था। तो वो अपने अंदर किसी भी किस्म का शिर्क ना रहे, वो सूरतुल इखलास से खास मोहब्बत करते थे, वो सूरतुल इखलास को जब ही बार बार पढ़ते थे ताकि उनको यकीन आ जाए कि हमने पिछला सारा शिर्क छोड़ दिया। जिस जमीन पर शिर्क भरा हो उस जमीन के ऊपर अल्लाहु अहद की आवाज जो है उस पर अमल करना आसान नहीं होता है। जस्ट फॉर अ ग्लिम्स, जस्ट फॉर अ ग्लिम्स। अपने माशरे को सोचें, अपना माशरा इज द होल सब कॉन्टिनेंट का मेजॉरिटी ऑफ द माशरा, द मास ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, द मास ऑफ द मासेस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। आज कह दिया जाए अल्लाहु अहद की बेसिस के ऊपर कि मज़ारों के ऊपर जाकर कोई भी नहीं मांगेगा, आज कह दिया जाए कि कोई भी मज़ारों के ऊपर जाकर फूल चादरें नहीं चढ़ाएगा, कोई मन्नत नहीं मांगेगा, कोई किसी दुनिया से जाने वाले सेंट के सामने हाथ जोड़कर खड़ा नहीं होगा और उसकी कब्र के सामने खड़ा होकर कुछ नहीं मांगेगा। आप देखें कैसे जलजला आता है इस ज़मीन के ऊपर। दैट वॉज द सिनारियो जो उस वक्त कुरैश की ज़मीन पर बिल्ट हो गया जब अल्लाह ने सूरतुल इखलास को नाजिल किया। मुशरिकीन का यही हाल था। इवन अहले किताब के लिए भी स्कॉलर्स लिखते हैं कि अहले किताब को भी इस अल्लाह के एट्रीब्यूट अहद से इशू था, उनको वाहिद से इशू नहीं था। अब तो आपको पता चल गया ना द डिफरेंस बिटवीन वाहिद एंड अहद, उनको वाहिद से इशू नहीं था बिकॉज वाहिद के अंदर वन आउट ऑफ मैनी आता है, लेकिन अहद में तो कोई भी नहीं आता। तो अहले किताब को भी इससे इशू था, दे वर फाइन विद अल्लाहु वाहिदुन बट दे वर नॉट फाइन विद अल्लाहु अहदुन, बिकॉज इसमें उनके अपने अकीदे के ऊपर बहुत ज़बरदस्त जद पड़ रही थी। आप उनका अकीदा उठाकर पढ़ लें, आप उनका क्रीड पढ़ लें, उनको वाहिद में इशू नहीं थे, उनको अहद से मसला था। इसलिए किसी ने अल्लाह का बेटा बनाया हुआ था और कोई कहता था कि कोई आएगा और हमारा सेवियर होगा और हमें अल्लाह की तरफ से खास तौर पर बचाएगा। तो इस सूरत ने सबको हिला कर रख दिया और सबकी शिर्क की जड़ें काट दी। अल्लाहु अहदुन, अल्लाह अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है। फिर बाज ओरिएंटलिस्ट ने सवाल उठाए जिसके अल्हम्दुलिल्लाह जवाबात पीछे कई सदियों पहले स्कॉलर्स दे चुके कि जब उन्होंने अरबी ज़ुबान को और कुरान को पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह के साथ अहद का एट्रीब्यूट मौजूद है तो फिर क्यों अल्लाह के लिए जो है वो कुरान में बाज़ोकात आता है इन्ना, हम, क्यों आता है खलकना, हमने बनाया, जअलना, हमने पैदा किया, अनजलना, हमने नाजिल किया, आमराना, हमारा हुक्म। ये सब चीज़ों का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलर्स ने दिया है और ये बिल्कुल ऐसे ही है जिसको आज पढ़ा लिखा मुसलमान बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर सकता है। ये जितना भी कुरान के अंदर ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया है वी का, जो अल्लाह ने अपने लिए इस्तेमाल किया है, दिस इज़ फॉर द मेजेस्टी, दिस इज़ एज अ इंडिकेटर ऑफ ग्लोरीफिकेशन। आप देखिए, आम इंसानों की मखलूक, आपने रॉयल वी के बारे में अपनी ही ह्यूमन हिस्ट्री में, यूरोपियन हिस्ट्री में खास तौर पर आपने खुद पढ़ा होगा अबाउट दिस मेजेस्टिक प्लूरल। दुनिया में किसी को थोड़ी सी पावर मिल जाती है, थोड़ी सी पावर, एनी पर्सन ऑफ हाई ऑफिस, कोई बिशप है, कोई प्रीस्ट है, कोई किंग है, कोई डिग्निटरी है, वो अपने लिए इतनी सी पावर मिलने पर दुनिया में वो अपने लिए इस पर्सनल प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं, और ज्यादातर ये पर्सनल प्रोनाउन जो ये जितने भी डिग्निटरीज और किंग इस्तेमाल करते हैं वो अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जब मखलूक में इतनी सी पावर मिलने पर मैजेस्टिक प्लूरल इस्तेमाल हो सकता है, तो जब खालिक मालिकुल मुल्क वो अपनी बात कर रहा है तो उसको पूरा इख्तियार है कि वो इस रॉयल वी को, इस मैजेस्टी प्लूरल को इस्तेमाल करे। और स्कॉलर्स कहते हैं इसीलिए अल्लाह ताला ने इस रॉयल वी को इस्तेमाल किया है। किसी मुसलमान को, किसी नॉन मुस्लिम को इससे इस कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है कि शायद अल्लाह एक से ज्यादा है, नाउज़ बिल्ला। नहीं, दिस वी इज लाइक अ यूनिक वी, एज अ रॉयल वी जो अल्लाह ने अपनी मेजेस्टी शो करने के लिए इस्तेमाल किया है। अल्लाह यूनिक है, विद दिस फर्स्ट पर्सन वी के बावजूद अल्लाह अकेला है, अल्लाह अहद है। दूसरा एक बहुत ही खूबसूरत एक्सप्लेनेशन जो ओरिएंटलिस्ट को जवाब दिया है स्कॉलर्स ने, ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, वो कहते हैं कि जो अरबी जुबान को समझता है जब वो इस रॉयल वी को कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करेगा कि जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ने ये रॉयल वी अपने लिए इस्तेमाल किया है, आप देखेंगी कि ये वहाँ वहाँ इस्तेमाल हुआ है जहाँ जहाँ अल्लाह के किसी भी काम में मखलूकात का शेयर भी मौजूद है। लाइक जस्ट वन सिंपल थिंग, द एग्जाम्पल ऑफ खलकना, लाइक से अल्लाह ने कहा खलकनल इंसान, हमने इंसान को पैदा किया, तो पैदा करने वाला तो यकीनन अल्लाह है, बट मखलूकात में से, इंसानों में से माँ का शेयर भी तो उसमें आ गया। तो ये अल्लाह की शान के अल्लाह ने मखलूकात के शेयर को भी उसके अंदर मेंशन कर दिया। दिस इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्कॉलर्स। इसी तरह एक एक्सप्लेनेशन स्कॉलर्स ने दी कि जब कुरान की नुजूल की बात आई तो आया अनजलना, हमने नाजिल किया, ऑल दो नाजिल करने वाला अल्लाह ताला है, लेकिन अल्लाह ने अपनी मखलूक जिब्राइल अलैहि सलाम को इस्तेमाल किया और जिब्राइल अलैहि सलाम को उस तंजील का हिस्सा बनाया गया। तो अल्लाह ने वहां पर मखलूकात के शेयर को भी मेंशन कर दिया। सो दिस इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लासिकल स्कॉलर्स। हाँ, जहाँ तक इबादत और इताअत की बात है, यकीनन वो अल्लाह की होगी और अल्लाह के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। इबादत में आपको प्लोरल जो है वो नहीं मिलेगा। तो अल्लाह अहद है, अल्लाह की यूनिक सिफत बयान कर दी गई, और अल्लाह ने ये अल्लाह का अहद होना आदम अलैहि सलाम से जो तालीमात भेजनी शुरू की, अल्लाह ने इंसानियत को तब से बताया, इसलिए कि तमाम अंबिया मुस्लिम थे। ये जो अकायद में नेशंस के खराबी आती थी, जो इंसान शिर्क की तरफ जाते थे, शैतान उनको बहकाता था, शैतान वसवसा डालता था। और शैतान क्या वसवसा डालता था, वेरी इंपॉर्टेंट एस्क इन रिलेशन टू सूरतुल इखलास, शैतान वसवसा डालता था कि देखो आखिर अल्लाह ने ही अपने बंदों में अपनी जैसी सिफात रखी। और ये मैं आपको बता दूं, ये मसला शिर्क का आदम अलैहि सलाम की नेशन से शुरू हुआ और ये आज तक मुसलमानों में मौजूद है। आज भी मुसलमानों को शैतान शिर्क में ऐसे ही इन्वॉल्व करता है, वो उनके जहनों में ये ख्याल डालता है कि अल्लाह जैसी सिफात ही तो इंसानों में होती हैं, तो अगर किसी इंसान को उठाकर जरा अल्लाह के बराबर कर दिया, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, इससे फर्क क्या पड़ेगा, हर्ज क्या है इससे। अल्लाह के करीबी बंदों को सहारा बना लो ताकि अल्लाह तक पहुंचना आसान हो जाए, जमीन पर मौजूद खुदा बना लो जो तुम्हें अपने फाइव सेंसेस से नजर आए ताकि आसमान के खुदा तक पहुंचा जा सके। और ये हमेशा से आपको मुशरिक सोसाइटीज का प्रॉब्लम नजर आएगा, किसी पावरफुल ऑब्जेक्ट को एक सोर्स बना लिया जाए, एक मिडिल ग्राउंड बना लिया जाए ताकि आसमान वाले खुदा को खुश किया जा सके। ये शैतान ने हमेशा शिर्क का हथियार इस्तेमाल किया है और इसी वजह से शिर्क मुख्तलिफ सोसाइटी में हमेशा से प्रिवेल करता रहा है।